आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
लखीमपुर कांड पर प्रियंका गांधी के तेवर ने यूपी के कार्यकर्ताओं में फूंकी जान, जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस। लखीमपुर खीरी में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत ने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी BJP की चुनौती बढ़ा दी है, वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस घटना ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस ने अपने आक्रामक तेवरों के जरिए साफ कर दिया है कि वह किसानों के मुद्दे पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस का कहना है कि किसान उसके लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पर पार्टी किसान आंदोलन के जरिए उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब और उत्तराखंड में सियासी फायदा तलाश रही है। रणनीतिकार मानते हैं कि लखीमपुर खीरी की घटना का असर यूपी के साथ पंजाब और उत्तराखंड चुनाव में भी दिखाई देगा। पार्टी किसानों की इस नाराजगी को वोट में तब्दील करने की कोशिश करेगी। इस प्रयास में वह कितनी सफल होगी यह चुनाव परिणाम बताएंगे, पर प्रियंका गांधी वाड्रा के इन तेवरों ने यूपी में पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकी है। पार्टी नेता प्रियंका के इस जुझारूपन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि देख रहे हैं। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, कहा आप शांति की बात करते, आपके PM लादेन को शहीद बताते। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि से कहा कि आप यहां शांति और सुरक्षा की बात कर रहे हैं और आपके प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन जैसे वैश्विक आतंकवादी का महिमा मंडन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह कोई पहले मौका नहीं था जब भारत ने अपने पड़ोसी की पोल खोली है। कई मौकों पर सबूत के साथ वैश्विक मंचों पर बेनकाब किया है। भारत पहली समिति निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अपने उत्तर के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जनरल डिबेट में कहा, पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि यहां शांति सुरक्षा की बात करते हैं, जबकि उनके प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन जैसे वैश्विक आतंकवादियों को शहीदों के रूप में महिमामंडित करते हैं। भारत के 40 करोड़ बच्चों को कोरोना टीके का करना होगा और इंतजार, दाम पर जिद बरकरार। दुनिया के कई देशों ने अपने बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत के 40 करोड़ बच्चों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ZyCoV-D के बच्चों वाले टीके को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कीमत पर विवाद के कारण यह अभी बाजार में नहीं आ पा रहा है। इसके पहले ICMRNIV की निदेशक ने सितंबर तक बच्चों का कोरोना टीका आने का दावा किया था, लेकिन दाम पर सहमति नहीं बनने के कारण ऐसा नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक सरकार टीके के दाम में कमी चाहती है। ZyCoV-D टीके को लगाने के लिए सुई की जगह जेट इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एप्लीकेटर की भी जरूरत पड़ती है। सरकार इंजेक्टर और एप्लीकेटर का भी दाम कम कराना चाहती है। इसके पहले नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK Paul ने भी माना था कि जायडस कैडिला के टीके की कीमत को लेकर मामला फंसा है। हालांकि माना जा रहा है कि अब सरकार हफ्ते भर के अंदर ZyCoV-D टीके की कीमत पर जारी गतिरोध को खत्म करके आगे बढ़ना चाहती है। इस बाबत पूछने पर राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार ग्रुप NTGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि बच्चों का टीकाकरण जल्द शुरू किया जाएगा। दूर हुई समस्या, पहले की तरह काम करने लगा WhatsApp, फेसबुक और Instagram। दुनिया भर में सोमवार रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म WhatsApp, फेसबुक और Instagram ने अचानक काम करना बंद कर दिया। यह समस्या सोमवार रात करीब 9 बजे सामने आई। अब ये सारे मैसेजिंग ऐप्स फिर से काम करने लगे हैं, लेकिन इसके डाउन होने की वजह अब तक सामने नहीं आई है। आउटेज के दौरान लोग मैसेज नहीं भेज पा रहे थे और न ही रिसीव कर पा रहे थे। आउटेज ट्रैकिंग कंपनी downdetector.com के मुताबिक 80,000 से ज्यादा यूजर्स ने WhatsApp और 50,000 से ज्यादा ने फेसबुक से शिकायत दर्ज कराई। एक और जहां फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स न्यूज फीड को अपडेट नहीं कर सके, तो वहीं WhatsApp यूजर्स कोई भी मैसेज नहीं भेज पाए। व्हाट्सएप पर 5xx का और फेसबुक में डोमेन नेम सिस्टम में एरर दिखा रहा था। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों पर मालिकाना हक फेसबुक का है। सर्विस ठप होने के बाद फेसबुक ने कहा है कि कुछ लोगों को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है। हम इसके लिए माफी मांगते हैं। जल्द ही इस समस्या को ठीक कर लिया जाएगा। वहीं व्हाट्सएप की ओर से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है कि हमें पता कि इस समय कुछ लोगों को समस्या आ रही है। हम चीजों को वापस सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसकी जानकारी देंगे। सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने वालों को इनाम देगी सरकार, जाने कितनी मिलेगी राशि। केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को नगद इनाम और प्रशंसा पत्र देगी। इस योजना के तहत जिला प्रशासन अच्छे नागरिक व्यक्ति या व्यक्तियों को एक साल में 5,000 रुपए का नगद इनाम अधिकतम 5 बार दे सकेगा, जबकि हर साल आयोजित होने वाले सरकारी सम्मान समारोह में उनको 1,00,000 रुपए नगद दिया जाएगा। यह योजना मार्च 2026 तक चलेगी। इसका मकसद दुर्घटना में सड़क पर पड़े गंभीर घायलों की अनदेखी करने के बजाय आम नागरिक उनको नजदीकी अस्पताल ट्रामा सेंटर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को सड़क हादसों में गंभीर घायलों को गोल्डन आवर दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर में अस्पताल ट्रामा सेंटर पहुंचाने वाले नागरिकों के लिए इनाम योजना संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विदित हो कि मंत्रालय ने पिछले साल सड़क सुरक्षा पर काम करने वाले ट्रस्ट एनजीओ संस्थानों को सालाना 5,00,000 रुपए इनाम देने व वित्तीय सहायता मुहैया करोन की योजना शुरू कर है।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HT Smartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन HT Smartcast।